भजन संहिता 73। भजन 73 परमेश्वर से संबंधित मूल सत्य के स्वीकरण से आरंभ होता है। भजन 73 पद 1। सचमुच इसराइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हमारे पास मूल सच्चाई हो जो हमें दृढ़ता प्रदान करे, क्योंकि हम सब जीवन के ऐसे अनुभवों को पाने जा रहे हैं जिन्हें समझना हमारी बुद्धि से परे है। कठिन दुखदायी अनुभव, ऐसे अनुभव जो परमेश्वर की भलाई और प्रेम को चुनौती देते हैं कि यदि परमेश्वर भला है तो उसने मुझ पर यह विपत्ति क्यों आने दी। यदि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है तो मुझे हृदय रोग क्यों हुआ। मैं सब बातों को जो जीवन में मेरे साथ होती है नहीं समझ सकता। मैं इस बात का आदि हो गया हूं कि जब भी मैं ऐसी परिस्थिति में होता हूं जो मैं नहीं समझता, फिर भी मैं उन पर मनन करना चाहता हूं। कुछ मूल सच्चाइयां हैं जिन्हें मैं नहीं जानता, और इस कारण जब ऐसी परिस्थितियां मेरे जीवन में आती है तो मैं उन्हें समझ नहीं पाता। जो मैं समझता हूं वो ये है कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, और सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इस तरह विश्वास के द्वारा मैं प्रतिकूल परिस्थितियों को स्वीकार करता हूं, यद्यपि मैं उन्हें नहीं समझता, मैं उन्हें परमेश्वर की ओर से मानकर स्वीकार करता हूं। परमेश्वर मेरे जीवन को नियंत्रित करता है क्योंकि मैंने अपना जीवन उसे दिया है, इसलिए जानता हूं कि इन परिस्थितियों में भी परमेश्वर कार्य करता है, चाहे वे कड़वी और प्रतिकूल हो। परमेश्वर मेरे जीवन में भलाई और सिद्ध योजना के लिए कार्य करता है और मैं जीवित रहता हूं। मैं केवल ये स्वीकार करता हूं, ओह प्रभु, ये बोझ मैं तुझ पर डालता हूं, क्योंकि तू अपनी भली योजना और उद्देश्य के लिए मुझे संभालेगा। यदि मेरे अंदर मूल सच्चाई नहीं है, जब विपत्तियां आती है और मैं प्रतिकूल परिस्थितियों में होता हूं, तब मैं पूरी तरह से टूट जाता हूं। बहुत से लोग प्रभु के साथ दृढ़ता से चल रहे प्रतीत होते हैं, और जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती है तब वे परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते। इसका कारण है कि उनके पास आत्मिक सच्चाई की मजबूत नींव नहीं होती है। ऐसे लोग जो सब परिस्थितियों में परमेश्वर की चंगाई के लिए उत्साहित किए जाते हैं, जहां बीमारी के लिए कोई स्थान नहीं होता, परंतु जब बीमारी आती है या जब मृत्यु होती है तब वे इसे सहन नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास परमेश्वर के सच्चे वचन की गहरी नींव नहीं होती। इसलिए जब ढांचा हिलता है उनके पास खड़े होने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता। यीशु ने कहा, मूर्ख मनुष्य ने अपना घर रेत पर बनाया, बुद्धिमान मनुष्य ने अपना घर चट्टान पर बनाया। बारिश और तूफान आया और जो मकान रेत पर बना था नाश हो गया, परंतु जो घर चट्टान पर बना था स्थिर रहा। लूका रचित सुसमाचार हमें बताता है, बुद्धिमान ने गहरा खड्डा खोदकर अपना घर चट्टान पर बनाया। यही मुख्य बात है कि हम परमेश्वर के साथ अपने संबंधों की नेव अच्छी तरह डालें, और ये नेव परमेश्वर के बारे में धर्मशास्त्र के अनुरूप उचित दृष्टिकोण पर आधारित हो। मैं जानता हूं परमेश्वर भला है, मुझे ये बात याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये सच्चाई मेरे जीवन के अनुभव को चुनौती देगी। परंतु मैं अंतरात्मा से जानता हूं कि मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है। इसलिए भजनकार इस आधारभूत नेव से आरंभ करते हुए कहता है, मैं जानता हूं परमेश्वर भला है। भजन 73 दूसरा पद, मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे। मैं समाप्ति पर था, मैं खत्म होने के समीप था, मैं फिसलने पर ही था और मैं डूब रहा था। भजन 73 पद 3, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय ढा करता था। हमें व्यवस्था की पुस्तक में आज्ञा दी गई है, लालच मत कर। नए नियम में हमें बताया गया है कि ईर्ष्या शरीर का कार्य है। अपनी दृष्टि परमेश्वर से हटा लेना और फलते फूलते मनुष्यों को ईर्ष्या से देखना सरल होता है। यदि आपके पास निजी हवाई जहाज है तो कैसे आनंद की बात होगी, या एक नाव हो जो पूरी तरह सुसज्जित हो कि कभी भी कहीं भी जा सके। लोग आपको सलाम करेंगे और बैठने के लिए कुर्सी निकालकर देंगे, तब आप आज्ञा देंगे, मैं इस सप्ताह के अंत में यहां जाना चाहता हूं या वहां जाना चाहता हूं। वाह, कैसे ऐश्वर्य! और ये सब पाने के लिए आपके पास शक्ति और समृद्धि होना चाहिए। जमीन जायदाद, जिसके आंगन में सुंदर बगीचे आदि हो, और जब हम जैसे लोग जिन्हें घर का किराया देना कठिन होता है, तब हम सोचते हैं ये उचित नहीं है। वे लोग एक बेकार का चित्र खरीदने के लिए $2,00,000 खर्च करते हैं और मैं एक मशीन नहीं खरीद सकता। हम दुष्टों की समृद्धि से ईर्ष्या करने लगते हैं। प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं विश्वासी की तरह चर्च जाता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं और अपना दशमांश देता हूं, मैं आज्ञाकारी हूं तो भी मैं परेशानी में हूं, मैं सदा परेशानी में रहता हूं, पैसों की समस्या, मेरे बच्चों की बीमारी आदि। यहां ऐसे लोग हैं जो तेरे नाम की निंदा करते हैं, वे तुझे नहीं जानते, वे अधर्मी हैं, तो भी उन पर आशीष है, वे समृद्ध है, उनके पास उनके हृदय की इच्छा से भी ज्यादा है। और इस प्रकार संसार में आप चारों ओर अन्याय देखें तो उसे संभालना कठिन हो जाता है। ऐसा लगता है कि यदि परमेश्वर भला है तो उसे भले लोगों को आशीषित करना चाहिए और दुष्टों को मिटा देना चाहिए, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब मूर्खों से ईर्ष्या करता था। और तब उसने ये बातें कहना आरंभ की जिन्हें वो देखता था, तो भी ये जान लेना और मान लेना आवश्यक है कि जो कुछ वो दुष्टों के बारे में कह रहा है वो सदा सच नहीं होता। परंतु शैतान के पास एक तरीका है कि हमारे मनों में ऐसे विचार डाले और उपजाए और उन्हें बढ़ाए, और वो इन विचारों को हमारे मनों में डालता है तथा उन्हें बड़ा चढ़ाकर दिखाता है। तब हम सख्त बातें करते हैं जिसे हम साधारण बातों पर भी अविवेकी निष्कर्ष निकालते हैं जो वास्तव में सही नहीं है। परंतु मैं नहीं चाहता कि आप कहे वे सही नहीं है, मैं नहीं चाहता कि आप कहे कि मैं सामान्य दिख रहा हूं, क्योंकि मैं परेशान हूं और मैं परिस्थिति को बढ़ाना चाहता हूं। हमारी एक प्रवृत्ति है कि जब हम परेशान होते हैं तब बातों को इतना बढ़ा देते हैं जितनी वे वास्तव में होती नहीं है। परंतु सच तो ये है कि ये एक खेल है जो शैतान हमारे मनों में खेलता है। भजन संहिता 73 पद 4 और 5, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती परंतु उनका बल अटूट रहता है, उनको दूसरे मनुष्यों की नाई कष्ट नहीं होता और मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। ये सच नहीं है, दुष्ट लोगों में भी कमजोरियां होती हैं, वे भी बीमार पड़ जाते हैं, वे दूसरे मनुष्यों की तरह निर्बल होते हैं। कई बार होता यह है कि आप किसी एक उदाहरण को लेकर बड़ा चढ़ाकर कहने लगते हैं। भजन 73 पद 6 से लेकर 10 तक, इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है, उनकी आंखें चर्बी से जलकती है, उनके मन की भावनाएं उमड़ती है, वे ठट्टा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बात बोलते हैं, वे ढींग मारते हैं, वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए परमेश्वर के विरुद्ध बोलते हैं और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं, तो भी उसकी प्रजा इधर लौट आएगी और उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। जो कुछ इच्छा वे करते हैं वह सब उनके पास है, परंतु फिर भी लोग सदैव उनके लिए उपहार और भोजन वस्तु लाते हैं। भजन 73 पद 11 और 12, फिर वो कहते हैं, ईश्वर कैसे जानता है? क्या परम प्रधान को कुछ ज्ञान है? दूसरे शब्दों में वे परमेश्वर का इनकार करते हैं। देखो, ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा सुभागी रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। भजनकार ये सब देखकर अपने मन में धारणा बनाकर एक गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, और वास्तव में यही शैतान का उद्देश्य है कि हमारे मनों में इस तरह के विचार पैदा करे। शैतान का उद्देश्य आपको गलत निष्कर्ष तक ले जाना है, जिसमें भजनकार भी फंस गया। भजन 73 पद 13, निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया। धार्मिक जीवन जीने की कोशिश से कुछ नहीं होता, भला होने का कुछ लाभ नहीं होता, धार्मिक होना कुछ लाभ नहीं होता। दुष्ट लोगों को सब कुछ मिलता रहता है, अतः निष्कर्ष ये निकाला जाता है कि धार्मिक जीवन से कुछ लाभ नहीं। भजन 73 पद 13 और 14, और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूं और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। मेरे जीवन में तो हमेशा परेशानियां आती ही रही है। भजन 73 पद 15 और 16, यदि मैंने कहा होता कि मैं ऐसा ही कहूंगा तो देख, मैं तेरे लड़कों की संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। जब मैं सोचने लगा कि इससे मैं कैसे समझूं, तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। जीवन में दुखदाई अनुभव आते ही रहते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत दुखदाई होती हैं, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं पाते। वास्तव में कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत दुखदाई हैं, जिन्हें हमें कैसे भी अपने मन से बाहर निकालना होगा। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। आपका ये विचार गलत होगा यदि आप ये समझो कि जीवन में जो कुछ होता है उसे आप समझते हैं। हम सदा तर्क की खोज करते हैं, ऐसा क्यों हुआ, क्यों परमेश्वर ने एक मसीही महिला का बलात्कार होने दिया, उसके घर में ही उसकी हत्या क्यों होने दी। इस प्रकार हम तर्क की खोज करने की कोशिश करते हैं, परंतु ये असंभव है, इसे समझने का कोई रास्ता नहीं है। हम जानते हैं कि परमेश्वर भला है, फिर क्यों परमेश्वर ने ऐसे होने दिया, हम नहीं जानते, इसे हम नहीं समझ सकते। इसके प्रति अंदाजा लगाने की कोशिश करना व्यर्थ है। जीवन में बहुत से अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं समझते। ये परमेश्वर के रास्ते हैं या परमेश्वर क्यों है? एक व्यक्ति है जो अक्सर मेरे पास आता रहता है और मुझसे कहता है, चक, मैं नहीं जानता क्यों परमेश्वर ने, और मैं कहता हूं आगे मत बढ़ो क्योंकि मैं खुद नहीं जानता। मैं परमेश्वर को क्यों नहीं जानता, मैं परमेश्वर नहीं हूं। मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्यों परमेश्वर ने ऐसे होने दिया। जब मैं शुरू में सेवा में आया तब मुझ पर बड़ा बोझ था कि मेरे पास हरेक के लिए उत्तर होना चाहिए क्योंकि मैं जवान था। लोग मुझसे प्रश्न पूछते थे और मुझे उनका उत्तर देना था। दबाव में आकर कुछ न कुछ उत्तर देता था जबकि मैं उत्तर नहीं जानता था। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, मैं यही कोशिश करता था उन्हें जवाब दूं कि परमेश्वर क्यों विभिन्न घटनाएं घटने देता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं बड़ा हो गया और लोग अब मुझसे ये आशा नहीं करते कि मैं सब कुछ जानता हूं। मुझसे लोग अब भी बहुत सवाल पूछते हैं और मैं सीधा उत्तर देता हूं, मैं नहीं जानता। ये बड़ा आरामदायक होता है। जब से मैं व्यसक हुआ हूं मैं ईमानदारी से उत्तर देता हूं, मुझे नहीं पता। मैं सारे उत्तर नहीं जानता। इसके अतिरिक्त मैं परमेश्वर के मार्गों को भी नहीं जानता। ये कठिन है क्योंकि मैं यीशु मसीह का दूत होने के नाते लोगों में परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं उसका प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं। जब लोग मुझसे कहते हैं परंतु क्यों परमेश्वर ने ये आपकी छोटी पुत्री के साथ होने दिया, परमेश्वर ने ये आपकी पत्नी के साथ क्यों होने दिया, मुझे नहीं पता। ये अवश्य ही दुखदाई है। मैं समझने की कोशिश करता हूं। ये मेरे लिए दर्दनाक है। इसलिए भजनकार कहता है मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने पर ही थे। जब मैं सोचने लगा कि मैं ये बातें कैसे समझूं तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। भजन 73 पद 17। जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाकर मेरी सोच विस्तृत हुई। परमेश्वर के घर में जाने की यही प्रमुख महत्व है। परमेश्वर के वचन के लिए इकट्ठा होने का महत्व यही है कि हमें अनंत का बोध होता है और हमारा दृष्टिकोण विकसित होता है। जीवन के विषयों को जानने में मेरी समस्या ये है कि मैं उन्हें आज और कल के संकीर्ण दायरे से सोचता हूं। मैं आज की बेचैनी का और आज के दुख का अनुभव करता हूं। जिस कठिनाई से आज मैं गुजर रहा हूं उसका अनुभव आज के दृष्टिकोण से करता हूं और मैं तुरंत उसका निवारण चाहता हूं कि इस स्थिति से छुटकारा पाऊं। जबकि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करता है तो वो अनंत काल की योजना से करता है। परमेश्वर अनंत काल को देखता है और अनंतकालीन मूल्य को देखता है। ये मेरे लिए उत्तम है कि मैं जीवन में अपंग होकर उसके साथ अनंत जीवन में प्रवेश करूं, ना कि जीवन में सर्व अंग रहकर नरक में जाऊं। क्योंकि परमेश्वर अनंत काल को ध्यान में रखकर कार्य करता है। कभी कभी जो मुझे प्यारा लगता है, जो मेरे लिए मूल्यवान है, उसको मुझसे वो ले लेना पड़ता है ताकि वो मेरे जीवन में अपनी योजना और उद्देश्य के अनुसार कार्य कर सके। मैं तो केवल उस बात को देखता हूं जिसे मैंने खो दिया। मैं उसको खोना नहीं चाहता था, मुझे वो प्रिय थी। अतः मैं कहता हूं ओह परमेश्वर तूने क्यों ले लिया। परमेश्वर देख सकता है कि वो चीज परमेश्वर की संगति और मार्ग से मुझे अलग कर रही थी, इसलिए उसने उसे हटा दिया है क्योंकि उसे मेरे अनंत जीवन में रुचि है। और ईश्वर के पवित्र स्थान में आकर मेरे अंदर अनंत काल की चेतना आई और मैं भविष्य को स्पष्ट देख सका। अब मैं अनंत काल में देखता हूं, जैसे पौलुस कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 4:18। हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तु सदा बनी रहती है। रोमियो 8:18। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। और जैसे कि यीशु ने कहा, इब्रानियों 12:2, उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। बहुत बार हमें क्रूस मिलता है जिसे हम नहीं उठाते। पिता, यदि संभव हो तो ये प्याला मुझसे टल जाए। मैं इस अनुभव से गुजरना नहीं चाहता, मैं इस हानि को उठाना नहीं चाहता, तो भी परमेश्वर उसे मुझ पर लाद देता है, क्योंकि वो उस महिमा को देखता है जो हम पर प्रकट होने वाली है। वो हमारे लिए अनंत काल की उस भलाई और लाभ को देखता है जो मेरे लिए उसकी दृष्टि में है। इसलिए भजनकार मानो अपने आप हंस रहा है, और जब तक वो ईश्वर के पवित्र स्थान में नहीं गया और वहां जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। भजन संहिता 73:18-19। निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यनाश कर देता है। आह, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नाश हो गए हैं। जोनाथन एडवर्ड ने भजन के इसी भाग को अपने संदेश क्रोधित परमेश्वर के हाथ में पापी लोग में प्रयोग किया था। शायद ये सबसे शक्तिशाली संदेश था जो अमेरिकन महाद्वीप पर कभी किसी प्रचारक द्वारा दिया गया होगा। जोनाथन एडवर्ड की आंखें कमजोर थी, इसलिए उसने संदेश लिख लिया था और उसके आंखों के नजदीक लाकर पढ़ा था, परंतु उसका संदेश इतना प्रभावशाली था कि उसका संदेश खत्म होने के समय सब लोग सामने आ रहे थे और रो रहे थे। वे परमेश्वर से दया की भीख मांग रहे थे, क्रोधित परमेश्वर के हाथों में पापी। उसका मुख्य पद था, निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है। उसने इसकी व्याख्या में कहा कि पापी नरक के ऊपर रखी बर्फ की सिल्ली पर चल रहे हैं और उनके पास सहारा लेने के लिए कुछ भी नहीं है। किसी भी समय उनका पैर फिसल सकता है और वे नरक में जा गिरेंगे। आपको जीवित रखने के लिए परमेश्वर पर आपका एहसान नहीं है। आपको सहारा देने के लिए परमेश्वर पर आपका एहसान नहीं है। परमेश्वर के हाथ में उसने पापियों को मानो नरक के गड्ढे पर जमी बर्फ पर चलते बताया, जहां पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। किसी भी समय आपके पांव फिसल जाएंगे और आप नाश हो जाएंगे। इसलिए भजनकार ने दुष्टों के जीवन के अंत को देखा, जो अच्छा नहीं है, जो सुखदाई नहीं है। ओह, मूर्खों से क्यों ईर्ष्या करें, उनके अंत को देखो। उनसे ईर्ष्या करने वाला मूर्खी होगा। देखो आगे भंडार में क्या है, वे घबराते घबराते नाश हो गए। भजन संहिता 73:20-21। जैसे जागनेहारा स्वप्न को तुझ जानता है, वैसे ही हे प्रभु जब तू उठेगा तब उनको छाया से समझकर तुझ जानेगा। मेरा मन तो चिड़चिड़ा हो गया, मेरा अंतकरण चिद गया था, मैं अपनी ही मूर्खता से दुखी हो गया था। ध्यान दे, हमारी ही गलती का फंदा हमें ना कसे। भजन संहिता 73 पद 22, मैं तो पशु सरीका था और समझता ना था, मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था। बिना किसी क्षमता के, बिना तर्क के, मैं पशु के समान बन गया था, मुझ में समझ ही नहीं थी। भजन 73 पद 23 और 24, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दहने हाथ को पकड़ रखा, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और जब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। कितना अद्भुत जीवन मेरे पास है, परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे अपने दैने हाथ से पकड़े रहता है, अपनी सुइच्छा से मार्गदर्शन करता है, और जब मैं जीवन के अंत में पहुंचूंगा तब वो मेरा महिमावन करके मुझे अपने पास रखेगा। भजन 73 पद 25 से लेकर 28 तक, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता, मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। जो तुझसे दूर रहते हैं वे तो नाश होंगे, जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसको विनाश करता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है, मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। भजनकार लगभग फिसल ही गया था, परंतु फिर उसने जाना कि दुष्ट जन फिसलने वाली जगह पर है, लेकिन आसाफ को ये बोध हो गया कि वो फिसलने वाली जगह पर नहीं है।